ओम शांति। बाबा की इस तपोभूमि में पिछले 3 दिन से हम सभी को बहुत ही अनुभवी भाई बहनों के अनुभव युक्त क्लास मिल रहे हैं। ऐसे अनेक अनुभवी भाई बहनों में आज राजू भाई भी हमारे पास अपना अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। उनके अनुभव का खजाना हम लें उससे पहले हम सभी उनका एक हाथ की ताली से दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। राजू भाई जी का शॉर्ट में परिचय आपको दे दूं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। माता पिता को आध्यात्म में विशेष रुचि थी। 1960 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके ही लौकिक घर में शुरू हुई। आप अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और सन 1971 में आप प्रथम बार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू आए। उसी समय आपके मन में समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवा करने की इच्छा हुई और माता पिता की स्वीकृति लेकर आप 1972 में विद्यालय की सेवाओं में समर्पित हो गए। आपने मुख्यालय की विभिन्न गतिविधियों में विशेष रुचि ली और मनसा वाचा कर्मणा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट में सेवाएं करते हुए 1976 से विशेष ईश्वरीय महावाक्यों को सिंधी से हिंदी में अनुवाद कर टाइप करके उन महावाक्यों को सभी सेवा केंद्रों पर भेजने की सेवा में सहयोगी बने। वर्तमान समय देश विदेश में जो भी ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं अथवा जो आध्यात्मिक पढ़ाई के लेसन हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं उसमें आपका विशेष योगदान है। आप उन्हें कंपोज करते तथा ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए उसमें विशेष सार रूप में वरदान अथवा स्लोगन के रूप में धारणा के रूप में विशेष पॉइंट को हाईलाइट करके आप सबके पास भेजते हैं। मुख्यालय से जो प्रतिमा स्व उन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे परमात्मा प्रेरणाएं दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है वो भी आप ही प्रकाशित कर सबके पास पहुंचाते हैं। आपको परमपिता परमात्मा द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आपने ईश्वरीय महावाक्यों से हर वर्ग की आत्माओं के प्रति प्रेरणाओं को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें भी तैयार की हैं। इन सब सेवाओं के साथ मुख्यालय में जो दादी जी के पास पत्र आते हैं उन पत्रों का भी उत्तरादि देने का कार्य आप देखते हैं। हिंदी टाइपिंग के साथ फोटोकॉपी डिपार्टमेंट तथा विशेष स्टेशनरी आदि भी आप ही संभालते हैं। सतत अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरा हुआ है तथा योग की जो गहन अनुभूति की है उसके आधार पर आप अपनी क्लास तथा प्रवचन के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं और आप ग्राम विकास प्रभाग के हेड कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ देश विदेश में भी विशेष भट्टियां कराने तथा प्रवचन के प्रोग्राम करने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे अनुभवी राजू भाई का आज क्लास हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के इस तपोवन में मधुबन में भट्टी करना ये भी कितना बड़ा भाग्य है, जहां स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने खुद तपस्या की, जिस स्थान पर साकार और अव्यक्त रूप में बाबा की हम बच्चों को पालना मिली, ये महान धरणी मधुबन जिसको हम कहते हैं, अपने आप में ही तपस्या के अनेक वाइब्रेशन से भरपूर है। यहाँ योग लगाने की मेहनत नहीं होती, सहज योग, स्वतः योग अपने आप लग जाता। तो मैं समझता हूँ आप सबने पिछले साल भी यहाँ भट्टी की थी और इस साल भी आज विशेष भट्टी के लिए 3 दिन से आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सभी कर रहे होंगे। बाबा की स्नेह की पालना में हमारा भी बचपन यहीं बीता। कभी कभी एक प्रश्न उठता है, कई आत्माएं ज्ञान से प्रभावित हुई और कई आत्माओं को केवल प्यार मिला, ईश्वरीय स्नेह मिला, उस स्नेह से प्रभावित हुई और बाबा पर न्योछावर हो गई। तो आप सभी ज्ञानवान हैं, ज्ञान से जन्म हुआ है या स्नेह से हुआ है? जिनका स्नेह से हुआ है वो हाथ उठाओ, बहुत कम है, भाई ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। माताएं सब ज्ञान से जन्म लिया है से? ज्ञान से भी तो स्नेह से भी ऐसे, पहले स्नेह कि पहले ज्ञान? अच्छा, हम लोगों को ज्ञान के बारे में इतना पता नहीं था। भले हमारे लौकिक घर में पिताजी रोज मुरली सुनाते थे, गीता पाठशाला चलती थी, लेकिन मैंने कभी बैठ करके मुरली नहीं सुनी, सोया रहता था, बचपन था। लेकिन जब मधुबन में आए तो मधुबन के अंदर आते ही सभी भाई बहनों का, दादियों का प्यार ऐसा मिला, जो अपनेपन की वो फीलिंग आई कि मुझे तो यहीं रहना है, मेरा तो यही घर है, मेरा यही परिवार है। कोर्स क्या होता है मैंने नहीं किया, लेकिन बाबा के घर में आते ही प्यार और प्रेम की पालना में ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। बाबा की मुरली से प्यार बढ़ गया, सेवा भी ऐसी मिल गई। तो आज की जो विषय हमें दी गई है, ईश्वरीय संगठन की नींव, रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह, ये टॉपिक है ना। हम सभी बाबा के बच्चे मास्टर स्नेह के सागर हैं। बाबा तो स्नेह से अपने बच्चों को अपने प्यार में बांध देता है। योग का आधार भी तो क्या है, प्यार ही है ना, कि सिर्फ ज्ञान ही है। अगर प्यार की कमी है तो योग नहीं लगता। ज्ञान वाले सिर्फ सोचते रहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, या अपने गुणों की महिमा करते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, लेकिन वो जो अनुभव है जिसमें बाबा कहते हैं आत्मा समा जाए, लौ में लीन हो जाए, वो लौलीन स्थिति का अनुभव बिना प्यार के नहीं होता। बाबा ने अपने बच्चों को जो इतनी पालना दी है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, उसके आधार से हम सब का प्यार बाबा से जुटता गया, बढ़ता गया। किस कीचड़ से बाबा ने हम सबको निकाला, क्या जीवन थी कलयुग के अंदर और बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। तो एहसान मानने के बिना आत्मा नहीं रहती। भले बाबा कहता बच्चे तुम मुझे क्या आशीर्वाद धन्यवाद दोगे, बधाई दोगे, मेरा तो ये फर्ज बनता है बच्चों की सेवा करना, बच्चों की पालना करना, लेकिन ऐसा निस्वार्थ प्यार लौकिक में अगर माँ बाप परिवार के सदस्य किसी को पालते हैं, प्यार देते हैं, तो सूक्ष्म में कोई न कोई कामना, कोई न कोई स्वार्थ रहता है, ये बच्चा बड़ा होगा, लायक बनेगा, संभाल करेगा, परिवार को चलाएगा, पैसा कमा के लाएगा, बहुत सारी अंदर की सूक्ष्म कामनाएं लौकिक में रहती ही हैं। लेकिन इस अलौकिक परिवार में जो हमें सच्चा प्यार मिला, रूहानी प्यार मिला, जिसके अंदर कोई भी कामनाएं बड़ों ने नहीं रखी, निस्वार्थ प्यार दिया, अपनेपन की फीलिंग दे दी, इसलिए ये ईश्वरीय परिवार जब हमें मिल गया तो लौकिक परिवार से अपने आप बुद्धि निकल गई, किनारा हो गई। बाबा ने ऐसा प्यार, परिवार ने ऐसा प्यार दिया जो दुनिया भूल गई, याद ही नहीं आया। बचपन का जीवन खाने पीने घूमने मौज करने का होता, लेकिन हम 15 साल की उम्र में ही बाबा के घर में आए और आते ही जब ईश्वरीय स्नेह मिला, दादियों ने अपनत्व की फीलिंग दी। अपनत्व की फीलिंग में सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं था, लेकिन हर प्रकार की देखभाल, हर प्रकार की संभाल। आज किसी ने खाना खाया है या नहीं, आज ये क्लास में आए या नहीं, आज इन्होंने योग किया या नहीं, हर बात पर नजर रखी। हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए फुल अटेंशन दिया और उसके लिए बीच बीच में इशारा, शिक्षाएं भी मिलती रही कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना, ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे खाना, ऐसे घूमना फिरना। एक एक बात के लिए हमें बड़ों ने गाइड किया। हम तो कुछ भी लौकिक जीवन में, लौकिक दुनिया से सीख करके नहीं आए थे, यहाँ ही आकर के सब कुछ सीखा। और सीखने की ही उम्र होती है 15 साल के बाद, तो वो सीखने की उम्र में ही दादियों की, बड़े भाई बहनों की जो पालना थी रूहानी स्नेह की, उसने इतना आकर्षित किया जो एक परिवार के बंधन में हम बंध गए। और मैं समझता हूँ कि जिस सेवा केंद्र पर ऐसी रूहानी पालना, ज्ञान और योग की पढ़ाई के साथ साथ मिलती है, वो सेवा केंद्र बहुत सक्सेस फलीभूत होता है। वहाँ की वृद्धि दिन प्रतिदिन ऑटोमेटिक होती जाती है। कोई भी प्रकार के विघ्न, कोई रुकावटें, आपसी टकराव, संगठन में भेदभाव नहीं उत्पन्न होते। लेकिन जहाँ पर संगठन के बीच में स्वार्थ की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और लौकिक रीति से लेन देन शुरू होती है, जहां लौकिकता आ जाती है रूहानियत के बीच में, वहां पर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम समझते हैं हम एक ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, दुख और सुख के हम सब साथी हैं। कुछ भी कोई को होता है, मुझे याद है कि आज कोई कुमार जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, अगर वो ईश्वरीय परिवार में बहुत प्यार से अपनी सेवाएं देते हैं तो कोई भी बात उनके सामने प्रॉब्लम के रूप में आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज जो बाबा कह रहे थे, शरीर की बीमारी। और अधिकतर देखा गया है कि जब कोई अकेला होता है परिवार में, लौकिक को भी ठुकरा देता, सेवाओं में लग जाता, और अचानक ऐसा पेपर आता है और परिवार का प्यार अगर उसको नहीं मिलता तो उसे दुनिया याद आती है। ऐसे कई स्थानों पर मैंने देखा कि अगर कोई ऐसा संगठन मजबूत है ईश्वरीय परिवार का, तो कोई के आगे कोई भी प्रॉब्लम आए कहते कोई ख्याल नहीं करो, हम बैठे हैं, आप कोई लौकिक को बताने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। बहुत निश्चिंत जीवन उनकी रहती है, समय पर साथ देते हैं, समय पर मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं। लेकिन कई बार दुख सुख में साथ देते देते अगर लौकिक रीति से कोई लेन देन शुरू हो जाती है, जहां पर स्वार्थ की भावनाएं पनपने लगती हैं, तो वहां पर विघ्न क्रिएट होते हैं, वहां संगठन टूटने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अच्छी कमाई है, पैसा है, धन है, और कोई बाबा का बच्चा गरीब है, आप समझते हैं इसको धन की जरूरत है समय पर, और समझ करके अपना परिवार का सदस्य है और आप उसको धन से सहयोग दे देते हैं, और कुछ समय तक उस सहयोग से वो चलता है, आप अपेक्षा रखते हैं कि इसका रिटर्न मिले जल्दी से जल्दी, लेकिन वो किसी कारण से अगर वो नहीं दे पाता, कोई भी कारण बनता है तो आपस में मन मुटाव होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति कहा सुनी हो जाती है, फिर सेंटर्स पर बहनों को कहा जाता, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को बहुत संभल करके चलने का ज्ञान दिया है। अगर आप दे सकते हो निस्वार्थ भाव से कि दे या न दे रिटर्न, परिवार का सदस्य है, इसको मदद की जरूरत है, आपने मदद कर दी, अपेक्षा नहीं है कि रिटर्न करेगा, करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, परिवार है, अगर ये अपेक्षाएं हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर ये अपेक्षाएं रखते हैं तो उधार की लेन देन करना या कर्ज लेना और देना, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा मर्ज है, और ये मर्ज कभी भी योगी नहीं बनने देता। बार बार बाबा की जगह पर वो व्यक्ति याद आने लगते हैं, किसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने इसको समय पर साथ दिया, मैंने इसको मदद की, ये इसको समझ नहीं पाया और इसका रिटर्न नहीं कर रहा है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अगर ऐसी कोई भावनाएं पनपती हैं परिवार के अंदर, तो बहुत संभल करके चलने की जरूरत है, कोई भी प्रकार की लौकिक लेन देन इस ईश्वरीय परिवार में न हो, ताकि आपके संस्कारों में टकराव की स्थिति पैदा हो। हमारा संगठन मजबूत तभी रह सकता है जब हम आपस में अनुभवों की लेन देन करना सीखें। अगर कोई आंतरिक कमी है, कमजोरी है, पुरुषार्थ में कोई ढीलापन है, उस आत्मा की प्रगति में सहायक बनना, उस आत्मा को समय पर साथ देकर के उसके मनोबल को बढ़ाना, ये सबसे बड़ी स्नेह की निशानी है। बाबा ने जो हम सबको स्नेह दिया है, रूहानी स्नेह, हम आप सब देख रहे हैं। आज अव्यक्त रूप में 44 वर्षों से बाबा की पालना हम सबको मिली, 45वां वर्ष हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने कितनी निस्वार्थ स्नेह से हम सबकी पालना दी है, कर रहे हैं अभी तक भी। किसी बच्चे से कुछ लेने की इच्छा नहीं है। कोई कुछ यज्ञ के प्रति करता है, कोई स्नेह देता है, कोई सहयोग देता है, बाबा उसका भी रिटर्न उसको दे देता। लेकिन फिर भी बच्चे संपन्न बने, समान बने, संपूर्ण बने, त्रिकालदर्शी होते भी, जानते भी कि ये नहीं बन सकता है, फिर भी पुरुषार्थ कराता है, बच्चे बच्चे कह करके उमंग उत्साह बढ़ाता है। हर वर्ष हम देखते हैं बाबा की कभी भी पिछली कमी को रिपीट नहीं करता कि मैंने बच्चों को पिछले साल भी ये कहा था, बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं करना, बच्चे क्रोध नहीं करना, बच्चे ये नहीं करना, फिर भी बच्चों ने कर लिया, क्यों बार बार इनको सिखाऊं। लेकिन इतना रहम है, इतना प्यार है दिल का कि ये मेरे बच्चे ही तो बनेंगे, कोई दूसरा तो बनने वाला नहीं है, इनको ही मैंने बनाया था और इनको ही बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी बेहद की दिल रख करके बाबा हम सबको अपने समान बनाने के लिए स्नेह की पालना दे रहे हैं। शिक्षाएं देना भी, इशारा देना भी स्नेह कहलाता है। सिर्फ खिलाना पिलाना, उठाना बैठाना, वही स्नेह नहीं है। लेकिन यदि कोई कमजोर है, कोई बार बार किसी विकार से, किसी संस्कार से युद्ध करते करते थक गया है, उसके मनोबल को बढ़ा देना, उसके उमंग उत्साह को बढ़ाना, ये भी एक सच्चा प्यार है। तो परमात्म प्यार का अनुभव हम सब करते हैं। और एक एक बाबा का बच्चा जिसने बाबा के प्यार का अनुभव किया है, उसकी नींव बहुत मजबूत है। कुछ भी हो जाए इस परिवार के अंदर, वो इस नींव से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि नींव मजबूत की है कि भगवान का प्यार हमें प्राप्त हो रहा है और उसके प्यार से हम चले हैं। ज्ञान का चिंतन है, मनन है, सुमिरन है, उससे भी नींव मजबूत हो रही है, लेकिन वो बाद की स्टेज है। प्रथम है उस रूहानी प्यार का अनुभव करना, उसमें समा जाना। माया क्या है, संस्कार स्वभाव क्या है, वो सब समाप्त हो जाते जब हम सब एक बाबा के रूहानी स्नेह के प्यार में समाये रहते हैं। और हरेक को इसका अनुभव करना चाहिए। कितनी प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं, अगर हम उन प्राप्तियों को भी याद करते हैं, कौन इतना प्यार से उठाएगा, कौन इतना प्यार से मुरली सुनाएगा, इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं देगा, बच्चे बच्चे कह करके पढ़ाएगा, और हर बात के लिए आप अमृत वेले से रात तक के लिए अपनी दिनचर्या पर नजर डालें, बाबा ने किस बात की हमें ट्रेनिंग नहीं दी, हर बात के लिए सिखाया है, मार्ग दिखाया है, बच्चे ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। कई बार कह देता है बाबा कि बच्चे तुम्हारे प्रवृत्ति के झंझट हैं, तुम जानो, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। पतित से पावन बनाने के सिवाय मैं दूसरी बात नहीं जानता हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे बहुत सपूत हैं, सच्चे हैं, कल बाबा की मुरली में, कल साकार अव्यक्त मुरली थी, उसके पहले जो परसों की मुरली थी, बाबा ने कहा कि जो बच्चे मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं उन्हें चुन चुन करके याद करता हूं, चुन चुन करके याद करता हूं कि कौन मेरा बच्चा कितने प्यार से मुझे याद कर रहा है। तो ऐसे बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको बाबा ऊपर से बैठ करके सकास देता है, उनको मदद करता है कि इस बच्चे ने हिम्मत रखी है, इस बच्चे ने का सच्चा मुझसे प्यार है, तो बाबा भी ऊपर चैन से नहीं बैठ सकता। चैन से बैठेगा ऊपर? कुछ भी होगा अगर कोई के पास और बहुत दिल से बाबा को प्यार से याद कर रहा है, तो बाबा उसको मदद देने के लिए बंध जाता है, भक्ति के अंदर बंध गया। ये तो हम सब उसके सच्चे डायरेक्ट बच्चे बने हैं, इनडायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट बच्चों की पालना, उनको प्यार, उनको मदद नहीं करेगा तो क्या इनडायरेक्ट को करेगा? तो हम सब बाबा के बच्चे उस प्यार के पात्र हैं, क्योंकि हम सब ने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। जो आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो श्रीमत को सिर माथे रख करके चलते हैं, बाबा उनके लिए बंधा हुआ है। लेकिन ध्यान ये रखना कि श्रीमत में कभी भी मन मत, पर मत, दूसरे किसी की मत ऐड नहीं हो जाए। बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, कभी भी नहीं, ये तो संभव नहीं है। बाबा तो कहता है लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हम बाबा की मुरली, बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स को अपने आराम की तकिया बना देते हैं। बाबा की पॉइंट्स हैं क्योंकि बाबा ने हमको कोई कारण से, किसी न किसी विधि से, कोई प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पार करने के लिए बड़े सरल रीति से बात कह दी है, लेकिन उसको ही हमने समझ लिया है। शायद बाबा की बात हमारे लिए ऐसी है जैसे बहुत आराम देने वाली है। कौन सी ऐसी बातें हैं? जैसे बाबा कहते हैं बच्चे पास तो आठ ही होंगे, 108 को भी थोड़ी थोड़ी डंडे खाने पड़े, सजा मिलेगी। तो कई बच्चे बाबा को कह देते जब आठ ही पास होंगे तो मेरा नंबर उसमें कहाँ है। बाबा की बात को ही लेकर अपने पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं, जबकि बाबा कहता है बच्चे तुम पास होकर के दो दिखाओ, आठ की माला नहीं है लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो बहुत ज्यादा होती है। डिवीजन में कई लोग आ सकते हैं, कई आत्माएं आ सकती हैं, आप रेस तो करो, दिल शिकस्त क्यों होते हो। तो बाबा की मुरली से, बाबा की पॉइंट्स को लेकर के ऐसी ऐसी बातें सुन करके कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं, कल भी मैं भट्टी करा रहा था तो एक प्रश्न करता है अगर ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हमने कहा ड्रामा में होगा तो फिर खाना खा लेना जाके, ड्रामा में होगा तो आबू रोड चले जाना, यहां से बैठे रहो यहीं पर। ड्रामा इसलिए बाबा ने हमको नहीं सिखाया है कि उसको सोच सोच करके कि ड्रामा में किया होगा तो कर लेंगे। तो ये तो एक बहुत बाबा की बात को एक एडवांटेज के रूप में लेने वाली है, लेकिन बाबा ने इसको क्यों कहा, किस लिए कहा, उसके पीछे क्या रहस्य हैं, अगर बाबा की मुरलियों को कोई ध्यान से सुनता है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता। आज की मुरली में ही बाबा ने कह दिया बच्चे ड्रामा में है, हिसाब किताब चुक तू करना है, कोई शरीर का बहुत बड़ी बीमारी आ गई, समझ लो कि कोई हिसाब किताब है, धर्मराज की सजाओं से तो छूट जाएंगे। कितनी एक अच्छी बात है अपने मन को खुश रखने की, एक अपने आप को दुख दर्द से उपराम करने की, अगर बाबा की इस बात को यथार्थ विधि से यूज किया जाए तो ड्रामा ढाल का काम करती है, लेकिन ढाल की बजाय उसको तलवार बना करके उससे युद्ध करते रहते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो बाबा की बात, ये बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, ये बहुत ऊंची पालना है। इसको यूज करें, हम इस ज्ञान को यथार्थ रीति से यूज करें और समय पर यूज करें, तो समय पर ज्ञान की पॉइंट्स यूज होने से मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। संगठन के बीच में जब हम रहते हैं तो बहुत से बातें, क्योंकि संस्कार की भिन्नता है, कहते बाबा तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस बहन के साथ, इस भाई के साथ, इसके साथ चलना तो बहुत मुश्किल बात है, इसे तो किनारा करके रहना ठीक है। मुरली सुनेंगे ठीक है, घर में भी पढ़ सकते हैं अगर बहन से नहीं बनती। कई लोग ऐसी ऐसी बातें लेकर के, जबकि बाबा ने इसकी बहुत गहन गति सुनाई है कि अगर बाबा से प्यार है तो बाबा से प्यार माना ऐसा नहीं है कि उसी के प्यार के आधार से आप सतयुग के राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। परिवार तो आपको चाहिए, संगठन तो चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो किस पर राज्य करेंगे, किसके साथ परिवार में आएंगे, परिवार तो यही बनेगा। और मैं समझता हूँ शायद आप सब अनुभव करते होंगे कि जो हम संगठित हुए हैं इतने ब्राह्मण आत्माएं एक स्थान पर, ये 84 जन्म में कहीं न कहीं पार्ट प्ले करते हुए आए हैं, कोई न कोई संबंध थे, कोई न कोई हिसाब किताब थे, तब हम सब एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के साथी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, तब अपनेपन की यहाँ पर वो फीलिंग्स हैं। जब हम आत्माओं का 84 जन्मों का ही पाठ रहा है, हो सकता है कोई पिछले जन्मों में एक दूसरे के साथ इतने टकराव हुए हों जो संगम पर भी इतना ऊंचा ज्ञान मिलते हुए हम उनके साथ मिल करके नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान को बड़ा यथार्थ समझ करके चलना है और अपने आप को एक दूसरे के संस्कारों से मिलाने का प्रयास करना है। संस्कार एक हो जाएंगे, कभी बाबा ने ज्ञान नहीं दिया। शुरू से बाबा कह रहे हैं संस्कार एक नहीं होंगे लेकिन एक बना करके दिखाने हैं। एक जैसे हो नहीं जाएंगे, दो के संस्कार भी आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। जब दो का शरीर एक जैसा नहीं, दो का फेस एक जैसा नहीं, दो का पार्ट एक जैसा नहीं, तो संस्कार एक जैसे कैसे हो जाएंगे। यहां तक बाबा हम बच्चों को कहते थे मम्मा और बाबा, दीदी और दादी, जिनको हम सब ने कहा ये दो शरीर एक आत्मा है। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकल में तो संस्कारों में बहुत भिन्नताएं थी, लेकिन उन्होंने संस्कारों की भिन्नताओं को ऐसे मिटाया जो देखने वाला कभी अनुभव नहीं कर सकता कि इनके संस्कार अलग हैं, इनके अलग हैं। अलग होते हुए भी उन्होंने मिला करके दिखाया। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया। हम यहां तक अनुभव करते थे, दीदी का कमरा ये था जो सामने है ना, जहां पर बैठते हैं हम सभी, और दादी का कमरा वहां है पीछे, बड़ी दादी का। कोई उस समय टेलीफोन नहीं थे, कोई मोबाइल नहीं थे, लेकिन अगर हम दीदी के साथ कोई भी बात कर करके और फिर सुना कि दीदी ने हमारी बात को ठीक नहीं समझा या ठीक हमें जवाब नहीं दिया, हम इसकी बात ये बात दादी तक ले जाएंगे, तो पता नहीं उनका आंतरिक कम्युनिकेशन क्या था कि अगर कोई दीदी के पास हो करके दोबारा दादी के पास चला गया तो दादी बहुत मुस्कुरा करके कहती थी तुम दीदी के पास हो क्या है ना। जब दीदी ने नई बात समझी तो मैं नहीं भी समझ सकती, जब दीदी ने ये निर्णय दिया तो दादी उसको बदल नहीं सकती। इसलिए दीदी के पास गए तो दादी के पास क्यों आए? दीदी और दादी को अलग समझते हो क्या? ये दोनों एक ही हैं। एक ने कहा है तो दूसरा उस बात को कट नहीं कर सकता। इतना आपसी एकता, संस्कारों की भिन्नता होते भी एक बन करके दिखाया, तब आज यज्ञ की इतनी बड़ी एकता और इतना बड़ा विस्तार हुआ है। विस्तार का आधार ये रहा कि हमारी निमित्त आत्माएं एक दूसरे को इतना सत्कार, इतना सम्मान दिया कि एक ने कहा, दूसरे ने कहा हाँ जी, कभी बात को कट नहीं किया। हम संगठन में अगर कोई एक बात कहता है हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, फौरन कट करते हैं, और जहां फौरन कट किया जाता है वहां संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, 5-10 लोग मान लो एक ग्रुप में हैं, मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हमारी दादी जी बहुत ही बात का ध्यान रखती थी, क्योंकि हम लोगों के ग्रुप थे कुछ मुख्य भाई, जब दादी से बैठ करके कोई प्लानिंग करते थे। मान लो अगर 10 का ग्रुप है और उसमें एक की विचारधाराएं अलग है तो दादी कहती थी अभी रुक जाओ, अभी ये कार्य करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि एक ने अपनी अलग विचार दिए माना वो विघन रूप बन जाएगा। इसलिए उनका ये प्रयास रहता था कि सबके विचार एक हो जाएं। जब सबके विचार एक हो जाएंगे तो कार्य संपन्न हुआ ही पड़ा है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम सभी भी अगर कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं, कोई भी सेवा की प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो सबके विचारों का मिलन होना जरूरी है और मिलाने का प्रयास करना चाहिए। कट करना, फौरन काट देना, ये बहुत बड़ी इंसल्ट मानी जाती है। अगर हम संगठन को एक बना करके चलाना चाहते हैं, बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मान लो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, तो भी बाबा कहता है बच्चे समय पर इशारा दो, उस समय कट नहीं करो। समझ रहे होंगे बात, समय पर इशारा देना चाहिए। ऐसा नहीं इस बात को छोड़ दें, अगर मेरे विचार अलग बन रहे हैं, लगता है ये ठीक नहीं होगा, तो बात देनी चाहिए, देना भी है, लेकिन उस समय जब संगठन में आप बैठे हैं जहां पर सब विचार एक जैसे बन रहे हैं, अगर वहां बात कट कर लेंगे तो कहेंगे ये है ही ऐसा, ये तो हमेशा कट करता है, इसको तो अवॉइड कर दो तो अच्छा है, इसको संगठन में ही आने ना दो, क्या होगा? संगठन टूटेगा या बनेगा? अगर हम संगठन को एक बनाना चाहते हैं तो सब उस समय हाँ जी तो करो, एक दूसरे की बात को स्वीकार करो, एक दूसरे की बात को सत्कार दो, अपने आप अगर नहीं कोई बात लगती जचती है तो अलग से इशारे में बोल करके बहन इस पर विचार करना चाहिए, ये बात ऐसे होगी तो अच्छा होगा। बहुत पॉजिटिव दृष्टि, हमारा संगठन एक मत तभी रह सकता है, हमारा स्नेह कायम तभी रह सकता है जब हम सब एक मत बन जाएं, किसी के विचारधाराओं को हम कट नहीं करें, बीच में कट नहीं करें। कटाक्ष की भावनाएं अगर बन जाती हैं तो हर चीज नेगेटिव दिखाई देने लगती है, ये होगा तो ये हो जाएगा, कईयों की आदत भी होती है हर बात में अपनी चलाने की, हर बात कट करने की, कटाक्ष करने की। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन ये ब्राह्मण परिवार का संगठन एक हो जाएगा उस दिन एक बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए हम सबको ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे के विचारों को सत्कार दे करके, सम्मान दे करके स्वीकार करना सीख जाएं। मान लो गलत है, हम समझते हैं इस बात में फायदा होने वाला नहीं है, समय आता है कोई बात बनती है, हम एक दूसरे के साथ ही बन करके उनको इशारा दे सकते हैं, बहन ऐसे नहीं ऐसे, भाई जी ऐसे नहीं ऐसे, अगर ये किया जाएगा तो बहुत अच्छी रिजल्ट निकलेगी, ऐसे किया जाएगा तो अच्छी, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका स्वीकार न करे। लेकिन जब कहीं सम्मान को अपमान पहुंचता है तो अभिमान की उत्पत्ति होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। किसी के सम्मान को अपमान पहुंचाना माना उसके अभिमान को बढ़ाना। हमको बहुत इस बात पर अंडरलाइन करना चाहिए कि हर एक को सम्मान की जरूरत है, चाहे छोटा है। हमारी मीटिंग में इस बार बहुत अच्छी बात निकल रही थी, मम्मा कहती थी बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो। अभी का जमाना ये आ गया कि जैसे बड़ों को सम्मान चाहिए ऐसे छोटों को भी सम्मान चाहिए, और समान वालों को तो बहुत सम्मान चाहिए। अगर हम सम्मान देने की एक नेचर बना लें तो सम्मान देने से सम्मान अपने आप कायम भी रहता है और सम्मान प्राप्त भी होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो ना, एक दूसरे की बात को तुरंत स्वीकार करके हाँ जी करके, हम लोग भी दादियों के साथ रहते हैं, इतने नजदीक कैसे आए? कभी कभी कोई पूछते हैं आप दादियों के नजदीक इतना कैसे गए? आज आप सबको मालूम होगा दीदी जब तक थी तब तक हमारा पाठ दीदी के साथ कई घंटे बीतता था, पत्र व्यवहार हम लिखते थे साथ में बैठ करके, क्वेश्चन आंसर सीखे उनके साथ बैठ करके, बहुत कुछ सीखा दीदी के साथ रह करके। दीदी के अव्यक्त होते ही 83 में दीदी अव्यक्त हुई, दादी के ऊपर बहुत जवाबदारियां आई, दीदी की सारी पोस्ट मुझे दादी ने दे दी कि तुमको संभालनी है, पूरे भारत की जितनी पोस्ट आती पढ़ो और उत्तर दो, लेकिन तुम जब भी चाहिए दादी के पास आ सकते हो। कॉन्फिडेंशियल बात है ये, बहुत यज्ञ की अंदर की बात जो पत्र व्यवहार में होती है, कई प्रकार की बातें सेंटर्स की आती हैं, बहनों की आती हैं, कोई भी बात नीचे ऊपर होती है, उनको पढ़ना, उनका उत्तर देना, उनकी सब बातें, बहुत इसके आधार से दादियों के समीप जाने का बड़ा अच्छा मौका मिला। और कोई भी बात मेरे द्वारा कहीं लीक न हो, मैं कोई यज्ञ की बात, कोई बहनों की बात, कोई बड़ों की बात जानता हूं, मान लो उसकी कोई ऐसी संस्कार है, ऐसी कोई कमी कमजोरी है, सदा ये ध्यान रहा कि अगर मुझे पता है तो मेरे कहीं भी किसी भी बात से वाइब्रेशन भी न जाए कि इसको ये बात मेरी पता है। इतना कॉन्फिडेंशियल अगर रहते हैं तो बड़ों की दिल को हम जीत लेते हैं, बड़ों के समीप चले जाते हैं। तो दादियों के साथ, फिर दादी प्रकाशमणि के साथ इतना नजदीक का संबंध हुआ, हर बात में जब भी कुछ होता मैं दादी के कमरे में बिना किसी से रोक टोक के पहुंच जाता। बात कर लेता, पूछ लेता, जवाब ले लेता, इतना नजदीक का संबंध बन गया, इतना स्नेह हो गया। दादी के अव्यक्त होने के बाद जानकी दादी आई, उनको इंडिया के बारे में, इतनी सारे सेंटर्स के बारे में, इतने बड़े यज्ञ की कारोबार के बारे में इतनी जानकारी नहीं, विदेश तो बहुत संभाला था, भारत देश के सेंटर्स को नहीं। लेकिन जब जवाबदारी आ गई तो हम लोग तो थे, दादी ने कहा अब तुम पूरा ही संभालो इसको, जो जरूरी हो मेरे से पूछ लेना, बात कर लेना। लेकिन अभी तक भी इतने साल हो गए, 7-8 साल दादी के जाने के बाद, हर पोस्ट दादियां ऐसे ही भेज देती, तुम इसको देख लो, उम्र भी है, बहुत जवाबदारियां बढ़ रही हैं। हर दादी के बहुत समीप जाने का, एक स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिल गया। सिर्फ ये रहा कि कोई बात अगर वो मुझे कह रही है, मुझे कट नहीं करना है। कभी भी मैंने दादी को नहीं कहा होगा, दादी ये कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, या मुझे नहीं आता है, कभी भी इन शब्दों में भी उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने अगर विश्वास रखा है, हम तो हमेशा समझते हैं संगठन की नींव विश्वास है। अगर हम इस परिवार को संगठित रूप में एक बना करके चलाना चाहते हैं, तो जैसे बड़ों ने, बाबा ने हमारे में विश्वास रखा, हम सभी भी एक दूसरे पर विश्वास रख करके चलें। कभी शक और शंका पैदा न हो, पता नहीं ये कैसा है, ये क्या करेगा, विश्वास इस यज्ञ की नींव रही है। हम कोई लौकिक संबंधी नहीं थे, जैसे लौकिक में बच्चों के प्रति माँ बाप का विश्वास होता है, आज तो भी विश्वासघात कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी कारण या कारण उनके नाम से प्रॉपर्टी कर दो, कर वो बड़े होकर के आपको ही ठुकरा देते, आपने समझा ये बेटा है बेटी है, इसके सिवाय मेरा वारिस कौन है, आपने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। अभी अभी एक माता मेरे पास आके रो रही थी, कहती है भाई जी मेरी उम्र हो गई, मेरे पति और मैं दो ही, मेरा एक ही बेटा है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम से करा ली, अभी एक पैसा नहीं देता मेरे को। बुजुर्ग हो गए, बेटे में प्यार था मोह था, सब उसके नाम से कर दिया, वो बड़ा हुआ, उसकी पत्नी आई और उस पत्नी ने उसको क्या भड़का दिया, जो माँ से उस संबंध माँ बाप से तोड़ लिया। अब वो बेचारी रो रही है, कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं। आजकल के कोई परिवार के ऊपर विश्वास करने की कलयुग में जमाना ही नहीं रहा। बाबा ने हम सबको कैसे विश्वास से एक बनाया है, कोई लौकिक संबंधित हम नहीं थे, लेकिन आज देखो दादियों ने इतना बड़ा यज्ञ सौंप दिया, जो उनके पास यज्ञ की मदोगरी आती हम लोगों के हाथ में दे देती, इसको संभालो, इसको गिनती करो, इसको बैंक में डालो, आज इनको यहां दे दो, आज इनको यहां दे दो, पूछती भी नहीं कितना गया कितना आया, किस आधार से, विश्वास के आधार से। लेकिन कभी भी विश्वासघात न हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है। हर एक आत्मा को इस ईश्वरीय परिवार के अंदर सच्चा स्नेही वही है जो कभी भी अपने आप से, बाबा से, यज्ञ से और इस ईश्वरीय परिवार से विश्वासघात न करे। ये ईश्वरीय परिवार है हमारा, और परिवार में एक दूसरा फेथ ही उसके जोड़ने का धागा है। जैसे कपड़े को सिलाई करने के लिए, जोड़ने के लिए धागे की जरूरत होती, ऐसे ही संगठन को जोड़ने का धागा विश्वास है, धागा है ये। फेथ जिसको कहा जाता, लव जिसको कहा जाता, सच्चा प्यार जिसको कहा जाता, उसे आधार से संगठन एक होकर के रह सकता है। इसलिए सच्चे प्यार में सहन भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है, लेकिन सामना नहीं करना है, सामना तो माया से करना है। अगर परिवार में सामना करना शुरू कर दिया, देख लूंगा इसने ऐसा किया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, क्या होगा। बाबा कहता बच्चे कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आना, इस बातों में नहीं आना, समाना सीखो। परिवार में समाया जाता है, मिसाल बताता हूं, यदि आपके परिवार में कोई बेटा कोई बच्चा जा करके कोई गलत करके आता, झगड़ा करके आ जाता, मारपीट करके आ जाता, और मम्मी को आके सुनाता है मम्मी मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, मम्मी क्या सोचती है, इस बात को मैं इतना संभालूं जिसके बाप को भी बताने चले, ये परिवार है, क्योंकि अगर बाप को पता चलेगा तो दो थप्पड़ और मार देगा इसको। ये है परिवार, माना बात को समा लेना और उसको समाप्त कर देना। पहले जन्म दिया, पालना की, बड़ा किया, सहन किया उसकी बात को, हर बात को सहन किया, भले उसने टट्टी किया, कुछ भी किया, उसको सहन किया, प्यार था परिवार का। सहन करने के बाद कोई गलती करके आया, उसको संभाल लिया, कभी भी उसका सामना नहीं किया। हम इस ईश्वरीय परिवार में जब हम कहते हैं हमारा परिवार है, तो क्या ये दोनों शक्तियां हमारे साथ साथ रहती हैं? चेक करना, सहन करना और समाना। कोई की बात अगर आपको पता भी चल गई, कोई ने सुनाई भी, अगर वो बात को समा नहीं पाए तो वो आप परिवार के लिए, इस ईश्वरीय परिवार के लिए बहुत बड़ा विघ्न बन जाएंगे। जितने सेंटर्स पर विघ्न आ जाते हैं उसका मूल कारण होता, मान लो कोई छोटी मोटी संस्कारों के कारण कोई मर्यादा का उल्लंघन किसी से हो गया, कोई भी बात नीचे ऊपर आपने देख ली, सुन ली, सुना दी किसी ने, क्या होगा? समाया आपने या समझ रहे हो चलो कोई बात नहीं, मुझे पता चली, मैं अपने दोस्त को बता देता हूँ, और उसको ऐसे बताते हैं कि भाई मैं आपको बताता हूँ ना, सीक्रेट बात है, आप नहीं किसी को बताना। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एक को बताया हो और उसके मुख से कभी दूसरे तक न जाए, और अगर वो बात 10 के कान तक चली गई तो बात क्या होगी? सब समझ रहे हैं ना ये बात है? वो बात बतंगड़ बन जाती, बात नहीं रहती, उसका बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। और बाद में कहा जाता है अगर उसकी जांच की जाती है तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, बात कुछ नहीं होती। उसने उस भाई, वो बहन उस भाई के साथ हंस के बात कर रही थी, शायद उसका कुछ होगा। अगर इतना ही उसकी बात को 10 लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो हो सकता है वो एक बहुत बड़ा केस बन जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर ये परिवार है, कोई छोटी मोटी बात देख भी ली, हो भी गई, शुभ भावना, शुभ चिंतन, ठीक रहे मर्यादा के अंदर, ऐसे नहीं हमने समा लिया तो ये समझे बात को बढ़ा दें, बढ़ जाएगी। लेकिन बाबा कहता बच्चे तुम्हारे पास बहुत बड़ा जादू मंत्र है, और वो जादू मंत्र है शुभ भावना का जादू, शुभ चिंतन का जादू। आप ऐसे शुभ चिंतक बनो, ऐसी शुभ भावना से संपन्न बनो, कुछ समय अगर उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए सकाश दो शुभ चिंतक बन करके, वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। योग करो, प्रयोग करो, उस बात को फैलाओ नहीं इधर से उधर, उधर से उधर, नहीं तो फैलते फैलते वातावरण को खराब कर देती। बाबा ने इस साल की मुरलियों में विशेष अंडरलाइन किया व्यक्त बाबा ने, वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में कलयुग चल रहा है, अंतिम समय है, 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, ये 10-30 वाला रावण जब विदाई लेने का समय होता है तो अपना फुल फोर्स से अटैक करता है। इन 5 विकारों का फुल फोर्स चल रहा है, कोई भी अगर थोड़ा भी अलबेला होगा तो फट से अटैक हो जाएगा उसका, चाहे जिस रूप में हो, विकारों का अटैक किसी पर किसी समय भी हो सकता है। प्रकृति के तत्वों की हलचल तो हम देख ही रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी सेवा भी करो। हम हमेशा एक बात ध्यान पर रखते हैं, प्रकृति पति हमारा बाबा है और उसकी दो ही रचनाएं हैं, एक हम हैं बच्चे हैं आत्माएं, और दूसरी प्रकृति उसकी रचना है। आत्मा प्रकृति पुरुष, आत्मा प्रकृति और प्रकृति पुरुष परमात्मा, तीन ही है ना, तीनों का ये सृष्टि चक्र का खेल है। जब प्रकृति के 5 तत्व एकदम फुल फोर्स से अटैक कर रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, 5 तत्व अपना अटैक कर रहे हैं क्योंकि परिवर्तन का समय है, और आत्माएं फुल विकारों के अधीन है, चाहे वो बड़े बड़े संत बने, महात्माएं बने, त्याग किया, लेकिन कोई पैसे के पीछे, कोई विकारों के पीछे, कोई किसी के पीछे भटक गए कलयुग के अंत में। और बाबा ने अपने बच्चों को उसमें से सेलेक्ट किया है, निकाला है। हो सकता है किसी बच्चे पर भी कभी अटैक हो जाए, क्योंकि माया तो फुल फोर्स में है। हम सब का फर्ज बनता है, अगर मेरे पर अटैक नहीं हो रहा है तो हमारा फर्ज है कि मैं भी कुछ समय विशेष तपस्या करके, ऐसी कमजोर आत्माएं, कमजोरों पर ही अटैक होगा, शक्तिशाली पर अटैक नहीं हो सकता। अगर किसी ने ज्ञान और योग से अपने आप को फुल मजबूत किया है, उस पर माया का अटैक नहीं हो सकता है। अटैक हो रहा है माना वो परवश है, कोई संस्कार के अधीन है या कोई पिछला हिसाब किताब है। हो गया अटैक, आप उसमें क्या मदद कर रहे हैं? हमारी मदद यही है, अगर हम सच्चा रूहानी स्नेह रखते हैं, हमारा आत्मिक प्यार है, तो उस आत्मा के कमजोर संस्कारों को समाप्त करने के लिए कुछ समय, जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जाग करके भी सकाश देते थे, मदद करते थे। बाबा को 2 बजे के बाद नींद नहीं आती थी। हम लोगों को भी जब नींद खुल जाती है अचानक, हम कहते बाबा ने उठाया है, अब सकाश देनी है। बहुत सी आत्माएं कमजोर हैं वायुमंडल के अंदर। ब्राह्मण आत्माओं के साथ अगर हमारा प्यार है, सच्चा प्यार है, तो हम इन कमजोर आत्माओं को कुछ समय बाबा से शक्ति लेकर के अपनी रूहानी वाइब्रेशन उनको पहुंचाएं। डायरेक्ट बाबा की किरणें जा सकती हैं, लेकिन बाबा कहता डायरेक्ट वो कैच कर सकेगा या नहीं। सूर्य तो देखो कितनी किरणें दे रहा है। अब इन शक्तियों को एकाग्र करने के लिए कांच की जरूरत डालते हैं ना। कांच अगर साफ स्वच्छ है और कांच के ऊपर वो किरण आई, तो कई गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसके द्वारा एनर्जी पैदा होती, सोलार हो जाता। डायरेक्ट सूर्य की किरण पानी को गर्म नहीं कर पा रही है, बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रही है, लेकिन वही सूर्य की किरण है। कांच की अपनी शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन वो स्वच्छ है, साफ है और उसकी तरफ है। हम सब अगर बाबा की शक्तियों को अपने स्वच्छ मन पर, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई से कोई लेना देना मेरा नहीं है, लेकिन हमारा परिवार है और ये परिवार ही हमारा 84 जन्म साथ रहने वाला है, इतनी भावना तो है। इस समय बाबा कहता है बच्चे किसी के प्यार में बंधना नहीं, किसी के हिसाब किताब नहीं बनाना, जो बनाया उसको चुकतू करना। बनाया हुआ चुकतू करना है और नया बनाना नहीं है, क्योंकि नए से सतयुग से शुरू होगा। ऐसे समय में इस परिवार के प्रति मैं आत्मा क्या कर रही हूं? अगर मेरा परिवार से प्यार है तो उसको कोई धन दे देना, कोई मदद कर देना स्थूल में, वास्तविक मदद नहीं है। सच्ची मदद ये है कि हम उस आत्मा की कोई भी कमी कमजोरी अगर पता है, उसके लिए कुछ समय शुभ चिंतक वृत्ति से शुभ भावना का दान दें। कमजोर है, जरूरत है, आवश्यकता है, हम बाबा की याद में बाबा से लें पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति, ऐसे रिफ्लेक्ट करें। बहुत बड़ा ये योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। और ऐसी सहयोगी आत्माएं जिनका योग भी सहज लग जाता, खुद भी सेफ हो जाती, कोई भी माया उनको अटैक नहीं करती। मैं एक और अभ्यास करता हूं, 5 प्रकृति के तत्वों को आवाहन करो। सुना होगा बाबा का एक संदेश, जब दादी जी अव्यक्त हुई थी तो बाबा ने कहा कि 5 तत्व देवता के रूप में दादी जी की वेलकम कर रहे थे। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, धरती देवता, आकाश देवता, सब देवता बैठे थे, खड़े थे सामने माला लेकर के, और दादी जी की आत्मा का आवाहन करके उसको मालाएं पहना रहे थे कि मेरी मालिक मेरे पास आ रही है। हम सब भी कुछ समय प्रकृति के 5 तत्वों को विशेष इमर्ज करके, आवाहन करके, उनको शक्ति, स्नेह, सकाश, शांति, वाइब्रेशन दें। कभी भी ये प्रकृति के तत्व मुझ आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा भूकंप हो जाए, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, चाहे सूखे पड़ जाए, लेकिन यदि मैंने इनकी सेवा की है तो आत्मा सुरक्षित रह सकती है। इस कलयुग के अंदर अंतिम समय में पांच तत्व और पांच विकार ये मेरे सहयोगी बन जाएं, ये मेरे को परेशान न करें। हर एक की शक्तियों को हम यूज करें। ये शक्तियां हैं ना, वो आसुरी शक्तियां बन गई हैं, उनको दैवी शक्ति के रूप में प्रयोग करके हम शक्तिशाली बनकर एक दूसरे को मदद करें। ये है सच्चा रूहानी प्यार। पांच प्रकार का स्नेह चाहिए। किस किस के साथ स्नेह रखना है? एक तो बीज को पकड़ लो, समय हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो बीज को पकड़ो, बीज से प्यार है तो सारा वृक्ष आपके हाथ में। कल बाबा की मुरली में था ना, बीज को पकड़ लो, माना सच्चा प्यार एक बाबा से, दिल का प्यार, आत्मिक प्यार, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई, ये व्रत है हमारा। एक बल एक भरोसा, कोई देदारी का बल और भरोसे की जरूरत नहीं मुझे। संगम युग पर जिसने ये व्रत ले लिया उसकी वृत्तियां स्थिर एकाग्र हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी। पहला ये व्रत ले लो कि मैं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं। बाबा हमेशा बंध जाएगा। अगर किसी देहधारी की याद आ गई ना, अगर ये होता तो मदद कर देता, ये होता तो मदद, बाबा किनारा कर लेता है। बाबा भी बहुत चतुर सुजान है, इसलिए बहुत दिल की प्यार की भावना से सच्चा स्नेह एक से रखो, बीज से रखो। बीज आपको जहां से जरूरत होगी मदद करा देगा। है जरूरत, जानता है बाबा, आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन पहले बीज से प्यार करना सीख लो। दूसरी बात है, कोई भी पेपर आता है छोटा मोटा, इधर उधर वर्णन करके उसको बढ़ाओ मत। कई लोग पेपर को बहुत सोचते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। छोटी सी बात आती है लेकिन उसको सोच सोच करके बड़ी लंबी कर देते, बड़ी बड़ी बना देते हैं। कई बार बाबा कहता ना, कोई सोच सोच कर इतने लंबे हो जाते हैं, विस्तार करके कोई इतने मोटे हो जाते हैं, जो बाबा की जोड़ी बनती नहीं ठीक है। इसलिए कोई भी छोटी मोटी बातें आए उनको सोचना नहीं है, बड़ा नहीं करना, वर्णन नहीं करना। बड़ी से बड़ी बात भी आ गई, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, पार हो जाएगा, कलप कलप पार हुई है। बड़ी को छोटा बनाना और छोटी को कभी बड़ी बनने नहीं देना, ये व्रत के रूप में अगर धारण करेंगे आप देखेंगे संगठन बहुत एकमत रह सकता है। तीसरी एक बात ध्यान पर रहती है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। कुछ भी मेरे लिए कोई सुनाए, भाई फलाना आपके लिए ऐसा बोल रहा था, अगर मैं मर्यादा में हूं, मैं श्रीमत के अंदर चल रहा हूं, मैंने कोई अवज्ञाएं नहीं की हैं, मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, बोलने दो, आप परवाह क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ अंदर होगा, तब आपके अंदर चिंतन चल रहा है। इसलिए बाबा कहता है तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। सुन लिया ठीक है, अगर कोई है बात मैं ठीक कर लूंगा, मैं सुधार लूंगा अपने आप को, मैं मूड क्यों खराब करूं? कई ऐसा मूड खराब कर लेंगे ना, भाई बहन जी आपके लिए ऐसे बोल रही थी, ऐसा उसके लिए दृष्टिकोण बना लेंगे, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं देख लूंगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना, कोई कुछ भी आपको सुना के चला जाए, बाबा के लिए सुना दे, मुरली के लिए सुना दे, मधुबन निवासियों के लिए सुना दे, अपनी निमित्त बहनों के लिए सुना दे, बाबा कहता है इसके लिए कान बंद कर दो, कान बंद कर दो दोनों, केवल एक बाबा से सुनना और कोई से नहीं सुनना, स्थिति अच्छी हो जाएगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, छोटी को बड़ी नहीं बनाना, एक बाबा एक बल एक भरोसा, एक बाबा के साथ बन करके रहना, हमेशा आपको मदद मिलती रहेगी। बाबा हमेशा अपने बच्चों को कहता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा की मदद के आधार से हमारी नैया पार हुई पड़ी है। कोई देहधारी की मदद की जरूरत नहीं संगम पर। जिसने एक बाबा को अपना संसार बना लिया, बाबा उसके लिए बंध जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति कोई वस्तु उसको आधार बनाने की अभी जरूरत नहीं है। सारा कल्प हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन संगम पर बाबा भी कैंची लगा रहा है, काटो इसको, इसको काट दो। कोई से देहधारी से जरा भी स्वार्थ भावना नहीं रखना, निस्वार्थ वृत्ति से एक दूसरे को मदद करो, साथ दो और अपनी प्रगति करो। संगठन एक रहेगा, कभी संगठन में तकरार न हो, दो मते न हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, उसको कहते हैं ये बहुत ज्ञानी आत्मा है। ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
शांति। बधाने मजा आवी? आजे ऊंघ नहीं आवी ने कोई? किसी को भी नींद नहीं आई? सभी बहुत अच्छी तरह से फ्रेश होके सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव युक्त राजू भाई का हम सभी को क्लास मिला, इसलिए राजू भाई का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हैं। आप तो चाहे शांतिवन हो चाहे मधुवन हो, दोनों स्थान इनके लिए ऐसे हैं जिसमें ये सदा व्यस्त रहते हैं, फिर भी हम सभी के लिए आज विशेष समय दिया है, इसलिए फिर से थैंक्स। ओम शांति।